धवला पुस्तक आठवी लेक्चर नंबर 3 ओ नमः सिद्धेव्य ओ नमः सिद्धेव्य ओ नमः सिद्धेव्य ओ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्छायाणं नमो लोए सौवसाहूणं साहु वज्छायरिये अरहंते वंद्यूण सिद्धेवी जे पंच लोग वाले वोच्छं बंधस सामित्तम। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। ये जो 6 खंड है उसमें से ये 3रा खंड अपना शुरू हुआ है, इसका नाम है बंध स्वामित्व विचय। जीव और कर्म अनादि से जो बंधे है, तो ये बंध संबंधी यहाँ चर्चा भी अपनी चल रही है। यहाँ हमने देखा था कि यहाँ 23 अलग अलग प्रश्न पूछे गए थे और उसके उत्तर में यहाँ सब चर्चा चली थी। देखो थोड़ा यहाँ से हम देखते हैं कि ज्ञानावरणा के बारे में, ज्ञानावरणादि के बारे में प्रश्न पूछा गया था। ये 5 नंबर के सूत्र में 7 नंबर के पृष्ठ पर ये पूछा गया था के 5 ज्ञानावरणीय, 4 दर्शनावरणीय, यशस कीर्ति, उच्च गोत्र और 5 अंतराय, इनका कौन बंधक है और कौन अबंधक है। इसके लिए प्रश्न पूछे गए थे, क्या बंध पहले रुकता है, क्या उदय पहले रुकता है, क्या दोनों साथ में वगैरह वगैरह। तो उसमें उन्होंने उदय विच्छित्ति की पूरी बात बताई। उदय विच्छित्ति आप नंबरिंग बताएंगे, केवल नंबर बता। हाँ ट्राई करो ना। हाँ 10, 4, तीसरे में 1, चौथे में 17, पांचवे में 8 है। हाँ यानी कषाय और तीरेन संबंधी 4। हाँ छठे में 5 बराबर है। कौन से 3 निद्रा आहार द्वीप बराबर। सातवें में 3 है, बंध विच्छेद नहीं पूछी। 3 और 1, 3 सहनन हाँ और 1 सम्यक प्रकृति। अब 8वें में तो आसान है, 6-9 कषाय करना। हाँ 9वें में 3 कषाय संज्वलन के। हाँ 10वें में 1 सूक्ष्म लोप। हाँ 2 सहनन। हाँ 12वें में
पहले 2।
हाँ अभी ये जो बात चल रही है उदय की। हाँ 5 ज्ञानावरण,
6 दर्शनावरण।
देखो पहले तो निद्रा प्रचला की 2 बात। हाँ, हाँ,
और 4 दर्शनावरण।
13वें में कितने 39 थे का 29 थे। हाँ 29 29। हाँ
और 14वें में 13।
हाँ 14वें में 13। अब 13वें की बातें बताएंगे। हाँ युद्ध विच्छेद थी नहीं 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 औदारिक तेजस कारमान शरीर 6 संस्थान फिर अंगोपांग औदारिक शरीर अंगोपांग वर्ण गंध रस स्पर्श। परंतु अगुर लघु को पहले बताओ ना। अगुर लघु उपघात परघात उच्छ्वास। अभी तरस बाधर प्रत्येक नहीं लेना, केवल प्रत्येक शरीर लेना। फिर विहाय गति रही गई है, दोनों विहाय गति अस्थिर भी अस्थिर भी, शुभ भी अशुभ भी, सुस्वर भी दुस्वर भी। चौबीस चार अट्ठाईस हो गए ना, निर्माण है परंतु एक कुछ रह गया, वज्रषभ नाराज सहनन। 29 गिने नहीं ना, मैं गिन रही थी 28 गिने मैंने। हाँ नहीं, सात ऐसा तो यहाँ नहीं लेना, वो तो यहाँ की पद। हाँ ये हम पढ़ रहे हैं, पेज नंबर है, पेज नंबर 15 पर है। वेदनी में से कोई एक, जैसे ये हमने यहाँ इस पुस्तक में वेदनीय 13वें में लिया, 14वें में लिया, दोनों वेदनीय 14वें में लिया। पहले हम कहते थे कोई एक वेदनी यहाँ लेते हैं, कोई दूसरे में लेते हैं, जिसका उदय है तो वही। हाँ चलेगा। हाँ हाँ लिस्ट है ना, तो उस लिस्ट में हमने एक वेदनीय यहाँ लिया था, एक वेदनीय बाद में लिया था। इस पुस्तक में जो हमने कल पढ़ा है, दोनों वेदनीय 14वें में लिए। ये आप पहली की लिस्ट मत पढ़ो, यह पुस्तक में क्या पढ़ा उसकी बात है। आपकी पत्रावली में देख रहे के बोल रहे हैं हम, वो तो हमने देखा था कर्मकांड की अपेक्षा या अन्य पुस्तकों में ऐसा लिखा भी है, यहाँ बात अलग हो रही है। दोनों वेदनीय, किसी के साता का उदय चल रहा है, किसी के असाता, इसलिए उसको लिया। ध्रुवोदय, हाँ बोलो ना। देखो देखो, ध्रुव बंदी का अर्थ है अनादि से बनती आ रही है और वो विच्छित्ति तक बनती रहेगी, और ध्रुवोदय का अर्थ है अनादि से दोनों, जिनका उदय हर समय चल रहा है। विग्रह गति में भी जो हमने नाम कर्म के उदय स्थान देखे थे, आपको याद होगा, विग्रह गति वाले शरीर पर्याप्ति तक, फिर वो उच्छ्वास पर, अलग अलग जो देखे ना, शरीर मिश्र काल, शरीर पर्याप्ति काल, उच्छ्वास काल, भाषा पर्याप्ति काल, पांच स्थान देखे थे। तो ये ऐसी प्रकृतियां हैं कि उनका तो निरंतर उसका उदय चलेगा, निरंतर ने अनादि से, ध्रुव निरंतर बात अलग होती है, अनादि से उदय चल रहा है, तो वो ध्रुवोदयी। हाँ अब बताओ, देखो तेजस शरीर कारमा शरीर, कल हमने इसको याद किया था, है ना, वर्णादिचार, स्पर्श रस गंध वर्ण, स्थिर और अस्थिर दोनों। देखो इसमें विशेषता क्या है, स्थिर बंध में स्थिर बनती है तब अस्थिर नहीं बन रही, दोनों एट ए टाइम नहीं बनती है, पर इनका उदय हमेशा ही अनादि से हर समय चल रहा है दोनों का एक साथ। कैसा, इसलिए कि स्थिर अस्थिर का कार्य क्या है, शरीर की जो कुछ अन्य अंदर में जो बातें चलती है ना, भले वो धातु रूप से या अन्य रूप से, तो अपने रूप रहने का काल है, फिर बाद में अन्य रूप परिणमित होता है, यानी वैसा नहीं, जैसे इसको कहते हैं ना कि रक्त यानी खून है, फिर वो आगे आगे के धातुओं में ट्रांसफर होती रहती है, सप्त धातु में ये धातु भी होते, उपधातु भी होते, उसमें ये सब बातें चलती है। आप कहेंगे देवों का शरीर तो सप्त धातु रहित है, वहां पर भी स्थिर और अस्थिर का उदय है। अभी जो यथायोग्य वहां जो कुछ वहां जो रचना है शरीर की, उसमें जो अन्य रूप, अपने रूप रहना और फिर अन्य रूप परिणमना, ये दोनों कार्य एट ए टाइम चल रहे हैं। अपनी भाषा में देखते हैं, हमारे जो अवयव है वो तो उसमें नए नए उसमें और सेल्स बनते हैं और पुराने डिजेनरेट होकर निकल जाते हैं, रीजनरेशन डीजनरेशन एट ए टाइम चलता है। ये समझाने के लिए मैं बता रही हूँ अपनी भाषा में, ये स्थिर और अस्थिर दोनों का कार्य चल रहा है। तो स्थिर भी और अस्थिर भी, और शुभ भी और अशुभ भी, दो ये भी लेना। हाँ अग्र लघु और निर्माण, ये 12 जो है वो ध्रुवोदयी कहलाती है। उपघात का, हाँ यानी वहाँ जहाँ पहुँचता है वहाँ उपघात का उदय शुरू हो जाता है। उपघात का कल प्रश्न चल रहा है ना, वो ध्रुवोदय है क्या नहीं है, उपघात ध्रुवोदय नहीं लिया, नहीं 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 विग्रह गति में नहीं है, ये ध्रुवोदय है। अब इसके साथ किसी न किसी गति का, विग्रह गति में कोई ना कोई गति का, अपन वो ऑप्शनल है, ये कैसे, ये तो बिल्कुल नियम से होगी होगी, उदय में बनती नहीं, उदय की बात। हाँ वैसे गति चार में से किसी एक गति का उदय होगा, अन्य जो अनादि से बनती नहीं, उदय में गति जाती जो है ना, उसका उदय तो नक्की होगा। पांच जो है उसका उदय तो हर समय चल रहा है, पर उसमें ऑप्शनली कोई गति, चार गति में से एक गति, किसी जाति में से एक जाति, इस तरह से उसको लेना। हाँ ना, ये अपना कर्म कांड है। 565 लाओ लाओ, इधर लाओ, आपके ना पुस्तक लाए। हाँ, देखो 12 तो ध्रुवोदय बताई ना, अभी इनमें नियम से उदय तो होता है, पर ऑप्शनली किसी का न किसी का होगा। यानी जैसे विग्रह गति में हम कहते हैं इतने प्रकृतियों का उदय निश्चित है, उसमें तो गत्यानुपूर्वी मिला के 21 का कहते हैं, तो 12 तो हमने बताई, और कौन सी है दूसरी? तो चार गति में से एक, पांच जाति में से एक, त्रसया स्थावर यानी उसमें से एक, बादर या सूक्ष्म, ये विग्रह गति में भी इसका उदय है, सूक्ष्म में से एक, पर्याप्त या अपर्याप्त, यानी त्रस बादर पर्याप्त, फिर उसमें शरीर को नहीं लिया, साधारण प्रत्येक को जब वहां पहुंचता है तब उसका उदय होता है। तो ये तीन लिए, गति जाति लिए और त्रस या स्थावर, बादर या सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, ये पांच हो गए। अब इसमें तो उदय इसका नियम से होगा, फिर सुभग दुर्भग में से एक होगा, आदेय अनादेय में से एक होगा, यशस कीर्ति और यशस कीर्ति में से होगा। जो छह जो वहां हमने युगल देखे थे ना, स्थिरादि छह युगल, उसमें से दो युगल तो ध्रुव में ही चले गए, स्थिर अस्थिर और शुभ अशुभ। और सुभग दुर्भग आदेय अनादेय यशस कीर्ति यशस कीर्ति इसमें से उसमें ले लिया। और सुस्वर दूसर का उदय होता ही ऐसा नहीं है, वो एक इंद्र में होता ही नहीं है, दोनों का ही नहीं होता, इसलिए उसको छोड़ ही दिया। ख्याल में आई बात? हाँ। और विग्रह गति इसलिए अनुपूर्वी में से उदय चलेगा, इसलिए 12 और 9 21 का उदय होता है। अब जहां पहुंच जाता है, जहां जन्म लेना है, अनुपूर्वी का उदय रुक गया और अन्य का उदय शुरू हो जाएगा। यानी शरीर नाम करने वाला संस्थान है, शरीर नाम करने प्रत्येक या साधारण का उदय शुरू होगा, औदारिक या वैकृत का शुरू होगा, ये वहां जाके शुरू हो जाता है। इस तरह से कहां कौन से ये सब जिसको कहेंगे उदय स्थान, नाम कर्म के उदय स्थान, वहां कौन कौन सी प्रकृति उदय रूप होती है वगैरह, अभी हमारे यही सब पूरा शिविर में विषय चला था। अभी आप आई थी ना बेटे, हाँ। बंध उदय और सत्व की भी बात हमने वहां ली थी, पहले पुस्तक के आधार से पूरा लिया था। ये जो प्रश्न पूछे गए थे उसके जवाब में अभी कुछ बातें चलेगी। देखो पहले तो पहले वो उदय विच्छित्ति बंध विच्छित्ति के बारे में उन्होंने उसका सब कौन से पहले बनती है कौन से बाद में बनती है ये बात चर्चा की थी। आपको याद होगा 8 प्रकृति ऐसी है, पेज नंबर 11 के आधार से मैं बता रही हूं कि पहले उदय नष्ट होता है और बाद में बंध, जिसे देवायु है, देवगति यानी वो देव चतुष्क कहते हैं उसको, आहार शरीर अंगोपांग और अयशस कीर्ति। पहले पहले उदय की विच्युति, जैसे चौथे गुण स्थान में देवायु वगैरह की उदय की विच्युति होती है, और देवायु बनती है 7वें तक और देवगति बनती है 8वें तक, इस तरह से उसकी अयशस कीर्ति भी चौथे तक उसका उदय है और बनती है 6ठे तक, आहारक आहारक अंगोपांग उदय है 6ठे में ही और बनती 7वें 8वें में, इस तरह से वो 8 की प्रकृति में 21 प्रकृतियां ऐसी है कि बंदर उदय की दोनों की विच्युति एक साथ होती है। मोहिनी की मेन हमने देखी थी मिथ्यात्व है, और फिर 15 कषाय लिए थे, हाँ, फिर पुरुष वेद लिया, हास्यरति भैजुगुप्सा लिया, फिर 4 जाति, फिर मनुष्य गत्यानुपूरी, आतप स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण, बाकी जो रिमेनिंग 81 प्रकृति है वो पहले बंधन नष्ट होता है बाद में उदय नष्ट होता है। उसकी भी हमने चर्चा की थी विस्तार से। तो फिर सूत्र में ये बताया था 13 नंबर के पेज पर कि बंधा अध्वान का अर्थ होता है उसकी सीमा कहां से कहां तक बनता है। तो ये जो सूत्र पूछा गया था ना, कौन सा पांच ज्ञानावरण वगैरह उसके बारे में कहां से कहां तक बनती है, तो पहले गुणस्थान से दसवें गुणस्थान तक बनती है। ये उसका बंध का अध्वान, ये शब्द थोड़ा याद रखना, अध्वान यानी उसका सीमा कहां से कहां तक बनती है, और उसी के द्वारा बंध का स्वामित्व भी नक्की हो गया। फिर पूछा गया था कि चरम समय में नष्ट होती है कि पहले समय में नष्ट होती है कि बीच में वाले समय नष्ट होते हैं, तो चरम समय नष्ट होती है, ये भी बात हो गई। दसवें के अंत अंत तक ऐसा ना, अंतिम समय में जाकर विच्छित्ति होती है, यानी इन सब प्रश्नों का उत्तर। अब इसमें से कितने प्रश्नों का उत्तर उसमें आया कि नहीं आया, उसके लिए उसके आधार से जो हमने उदय विच्छित्ति देखी थी उसके आधार से भी उन्होंने बताया था इनमें से किसकी बंध विच्छित्ति पहले होती कि उदय विच्छित्ति। जैसे पांच ज्ञानावरणी बनते कहाँ तक है, दसवें तक, और उदय बारहवें तक है। चार दर्शनावरण वो भी दसवें तक बनती है, बारहवें तक उदय है ना। और कौन सी पूछी गई थी, पांच अंतराय दसवें तक बनती है, बारहवें तक उदय है। और यशस कीर्ति उच्चोत्तर तो अयोगी के अंतिम समय तक उदय है, और बनती कहाँ तक है, दसवें तक बनती। अब ये जो स्वोदय और परोदय की बात चली थी, कल बात हुई थी अपनी, पेज नंबर 14 पर अभी देख रहे हैं, 14। अब ये स्वोदय से बनती है कि नहीं बनती, इसकी अभी चर्चा चलेगी। तो यहाँ जो बड़ा पैराग्राफ है ना पहला, उसमें नीचे से चौथी लाइन वही इस प्रकार है, क्या तो कौन सी प्रकृतियां स्वोदय से, कौन सी परोदय से, और कौन सी स्वोदय परोदय से बनती है, उसकी उसका निरूपण चलेगा, वो हमने कल से शुरू किया था। तो कहते हैं नारकायु देवायु, ये पढ़ते ही हमको ये ख्याल आएगा, वो कल कल की बात। हम पहले बड़े पैराग्राफ नीचे से चौथी लाइन, तो क्या नरकायु नरकायु के उदय में बंधेगी, तभी ये लिस्ट जो चल रही है अपने उदय में नहीं बंधने वाली बात चलेगी। तो कहते हैं नारकायु देवायु, नरक गति देवगति, वैकृत शरीर आहारक शरीर, वैकृत शरीर अंगोपांग आहारक शरीर अंगोपांग, नरक गत्यानुपूर्वी देवगत्यानुपूर्वी, और तीर्थंकरीय 11 प्रकृतियां परोदय से ही बनती है, स्वोदय में बनती ही नहीं, ये नक्की हो गया। उसके लिए हमने गाथा भी पढ़ी थी। उसके बाद नीचे के दो लाइन, पांच ज्ञानावरणीय चार दर्शनावरणीय मिथ्यात्व तेजस और कारमा वर्णादि चार अग्र लघु स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ निर्माण और पांच अंतराय, ये 27 प्रकृतियां सोदय से बनती है, क्योंकि उसका उदय ऊपर तक चलता रहता है, और जब तक ऊपर तक है ना, मिथ्यात्व का उदय मिथ्यात्व में ही है, और तब तक तो बनती है, अपने उदय में बनती रहती है। तेजस कारमण का उदय तो ऊपर तक चल रहा, हमने देखा 13वें तक है, और वो बनती 8वें तक, यानी अपने उदय में बनती है, इसको सोदय से बनती ऐसा कहेंगे। बाकी स्थिर स्थिर शुभ शुभ वो भी ध्रुवोदयी है, निर्माण भी ध्रुवोदयी है, अग्र लघु भी ध्रुवोदयी है, वर्णादि चार भी ध्रुवोदयी है, ये सब तेजस से लेकर वो निर्माण तक जो हमने देखे थे, 12 जो ध्रुवोदयी है ना, वो अपने उदय में बनती है, स्वोदय में बनती है। अब यहां तक हमने पढ़ा था, अभी आज का विषय यहां से शुरू हो जाता है। हाँ, आपका ये प्रश्न है कि ज्ञानावरण का उदय है इसीलिए उसका बंद हो रहा है, ऐसा उसका नहीं है। क्या उसका उदय उसके उदय में बनती है कि अनुदय में बनती है, ये उसका है। अपने उदय में बनती है क्या, अनुदय में बनती है। क्या अपना अनुदय हो तो भी बन सकती है, ऐसा है क्या, कोई प्रकृतियां स्वोदय से भी और परोदय से भी, यदि यही आपका प्रश्न दूसरे प्रकृति में लगा लेते, मान लेते साता ऐसी प्रकृति, वो साता के उदय में भी बनती और असाता के, तो उसके कारण ये बन रही है क्या? सभी प्रकृतियों के बंध के कारण क्या है? मिथ्या तो असंयम कषाय और योग, ये ज्ञानावरण के कारण वो नहीं, ज्ञानावरण नहीं बन रहा है, परंतु उसके उदय चल रहा है, उसमें इसका बंध चल रहा है। ख्याल में है ना? नहीं तो जो ऐसा है, जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध परोदय से होती है, तो पर का उदय उसका कारण बनना पड़े, कर्मों का उदय उसका कारण मानना पड़ेगा। ख्याल में आती है ना प्रश्न ऐसा जो है आपका? अभी हम 15 पेज पर है, पहली लाइन, पांच ज्ञानावरणीय, हमने पहले चार दर्शनावरण लिए, अभी कौन से पांच रह गए है? ब्रह्मा, पांच दर्शनावरणी, सॉरी मैं ज्ञानावरणी गलत बोला, पांच दर्शनावरणीय कौन सी ये? नहीं, वो चार हमने पहले ले लिए, पांच दर्शनावरण, हाँ पांच निद्रा, पांच दर्शनावरण में पांच निद्रा लेना, दो वेदनीय, 16 कषाय, 9 कषाय, तिर्यगायु मनुष्यायु, तिर्यक गति मनुष्य गति, एकेंद्रीय। हम एक एक प्रकृति के बाद में चर्चा करेंगे, पहले पूरी लिस्ट पढ़ते हैं। एकेंद्रीय, द्विंद्रीय, तीनेंद्रीय, चतुरेंद्रीय, पंचेंद्रीय, जाति, औदारिक शरीर, 6 संस्थान, औदारिक शरीर अंगोपांग, 6 सहनन, तिर्य गति प्रायज्ञानपूर्वी, मनुष्य गति प्रायज्ञानपूर्वी, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आतप उद्योत, दो विहाय गति, त्रस स्थावर, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, प्रत्येक साधारण शरीर, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, आदय अनादेय, अनोदय हुआ है अनादेय करो, यश कीर्ति अयश कीर्ति, नीच गोत्र और उच्च गोत्र, ये 82 प्रकृतियां स्वोदय परोदय दोनों प्रकार से बनती है। अब इसकी बात हम कहेंगे, इसकी चर्चा करते हैं। पांच निद्राओं का बंध, ये पांच निद्रा का बंध है, स्थान वृद्धि निद्रा, निद्रा प्रचला प्रचला बंध, विच्छित्ति कहाँ है? दूसरे में, दूसरे तक बनती है, और बाकी तीन, बाकी दो आठवें तक बनती है। तो उसका बंध इसके उदय नहीं होने पर भी बन सकता है कि नहीं, यानी नींद में इसका बंध होगा कि नहीं होने पर, यह नक्की करो। मिथ्या दृष्टि है तो पांचों निद्रा का बंध कर रहा है वो, क्योंकि वो तो ध्रुवबंदी प्रकृतियां है, तो नींद में भी कर रहा है, जब निद्रा का उदय नहीं तो जागृत अवस्था में भी कर रहा है हर समय। इसका अर्थ क्या है? वो स्वोदय से भी बनती और परोदय से भी बनती, जागृत अवस्था के कारण नहीं बन रही है। समझ में बात? अब दो वेदनियां, साता और असाता, दोनों का ही अपने उदय में भी बंद हो सकता है, असाता के उदय में भी बंद हो सकता है। साता का बंद साता के उदय में भी होता है, असाता के उदय में भी होता है, वैसे असाता को लगा लो। कोई प्रश्न है मनीषा दे? उदय नहीं, एक के उदय में दूसरे का उदय नहीं कह रहे, एक के उदय में दूसरे का बंद कह रहे। बंद हो सकता है ना, अभी देवों के कुछ, जब देखो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त साता असाता का उदय पलटता है, बंद भी पलटता रहता है, तो साता का उदय चल रहा है, अच्छी अनुकूलता है हम कह रहे, तो उसमें पाप प्रकृति, पाप बांधता है कि नहीं बांधता? पाप परिणाम होते कि नहीं होते? नहीं, तो जिसकी अनुकूलता चल रही है वो सारे पुण्य बांधते रहेंगे, साता ही बांध, ऐसा नहीं है ना? ख्याल में है ना? यानी सभी अनुकूलता है, पूर्व का पुण्य का उदय चल रहा है, तो नरक गति बांध रहा है कि नहीं बांध रहा? हो सकता है कि नहीं? मिथ्या दृष्टि है, नरक गति भी बांध सकता है ना, तो नरक गति के साथ असाता भी बांधेगा कि नहीं बांधेगा? अब किसी का असाता का उदय चल रहा है, कोई रोग है, कोई अन्य चीज है, और फिर उसके तत्व ज्ञान का विचार चल रहा है उसका, तो देवगति साता वेदनी सब बंध रहा है उसके। ये जरूरी नहीं कि संयोगों की, जैसे संयोग प्रतिकूल या अनुकूल हो, साता या असाता के लिए हम बता रहे हैं, तो उसमें वैसा ही फिर अनुकूलता में पुण्य ही बांधे, ऐसा जरूरी नहीं है, पाप भी बांधता है। यहां तो केवल साता असाता की चर्चा हो रही है। अब 16 कषाय, 16 कषाय में लेना एक के उदय में दूसरे बनती है कि नहीं बनती। जैसे देखो मिथ्या दृष्टि है तो उदय क्रोध का चल रहा है, तो क्रोध मान माया लोग सभी बन रहे हैं ना, ना एट ए टाइम सब बनते हैं, उदय एक का है यही तो कहते हैं। 16 बंदेगे मिथ्या दृष्टि के 16 के 16 बंदेगे, और उदय 4 का है, कौन सा? अनंतानुबंधी क्रोध और प्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध, संज्वलन क्रोध, और बन रहे 16 के 16। यानी क्रोध के उदय में भी सब बन रहे हैं चारों, या मान के उदय में भी सब बन रहे, इस तरह से लेना।
उदय एक का है,
एक का यानी चारों प्रकार का उदय है, बनते सब है। यानी ये 16 कषाय के बाबत में लागू होता है। अभी वो कौन से गुणस्थान में कितने बनते वो बात अलग है। 9 कषाय, जैसे 9 कषाय में एक एक की बात करते हैं, हास्यरति, तो हास्यरति जैसे हमने साता असाता में देखे, हास्यरति बनती है, अरति शोक बनती है, तो अरति शोक का उदय चल रहा है तो हास्यरति का बंध भी हो सकता है, ख्याल में? शोक के उदय में शोक का ही बंध करे जरूरी नहीं, जैसे साता का उदय में असाता का भी बंध कर सकता है, साता का भी कर सकता है, इस तरह से उसको ले लेना। क्योंकि ये ध्रुवबंधी तो है नहीं, ऑप्शनल है, और उदय भी ऑप्शनल चलता है इनका। तो 9 कषाय में हमने हास्य रति शोक रति की बात देखी। अब भय जुगुप्सा की बात है, भय जुगुप्सा में उदय के क्या रूल है, नियम है, और बंध के क्या नियम है? देखो बंध तो ध्रुवबंधी है, भय और जुगुप्सा का बंध तो अनादि से चल रहा है, और कहां तक होगा? 8वें के अंत तक, हास्यरति भय जुगुप्सा है ना, और उसका उदय कैसा होता है? या तो भय का उदय, या जुगुप्सा का उदय, या दोनों का उदय, या दोनों का भी उदय नहीं, अंतर्मूर्त अंतर्मन, ये साइकिल चेंज हो जाता है। यानी दोनों का उदय नहीं होने पर भी दोनों का बंध हो रहा है, ये है ना। हाँ, केवल एक भय का उदय होने पर भी दोनों बनते हैं, अकेले जुगुप्सा के उदय में भी दोनों बनते हैं, और दोनों के उदय में भी दोनों बनते हैं, यानी स्वोदय से भी बनते हैं परोदय से। ये बात हमको सिद्ध करनी है, इसलिए हम एक एक कषाय की बात अलग अलग ले रहे हैं। अब पुरुष वेद के उदय में तो पुरुष वेद बंधेगा ही बंधेगा, क्या नपुसक वेद के उदय में पुरुष वेद नहीं बन सकता? ख्याल में? स्त्री वेद का उदय हम आपको सब चल रहा है महिलाओं को, तो पुरुष वेद नपुसक वेद सभी अंतर्मूर्त, मिथ्या दृष्टि तो अंतर्मूर्त में पलट पलट, परिणाम तो हर समय चल रहा है, बिना परिणाम के कैसे? परिणाम देखो, जो स्त्री वेदी है उसका हर समय चल रहा है परिणाम, हर समय चल रहा है उदय, उसका बंध किसका होगा? बंध तो मिथ्या दृष्टि है, तो तीनों वेदों का अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में नियम से पलटकर बंध होता है, परिणाम चल रहा है वो वेदों के परिणाम। ये जरूरी नहीं कि वो वेद से वेद का बंध नहीं हो, ऐसा नहीं कह रहे हम। वेद के परिणाम जो है उसका अर्थ वेद का कुछ कार्य रूप मत सोचो। आप कहेंगे अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, वेदों का परिणाम कहाँ है? तो वेदों का उदय तो हर समय चल रहा है। जो हम वेदों का परिणाम या मैथुन रूप जो क्रिया की या अन्य परिणामों की बात करते वो बात अलग है, वो तीव्र उदय या उसको उदीर्ण आदि कहेंगे, वो कार्य रूप बात मत सोचो। अभी जो गर्भ का बालक है ये वेद का उदय कब से है? तो हर समय चलता है, पहले समय से मरण के समय तक वेदों का उदय है। ऐसा नहीं कि वो कषाय के जैसा टर्न भी नहीं होता कभी, कषाय जैसे क्रोध मान माया लोभ में परिवर्तन होता है उदय में, ऐसे वेदों में नहीं होता। एक जो वेद है वो जन्म यानी गर्भ से लेकर मरण तक चलेगा, तो हर समय उदय है ही, तो बंध भी हर समय चल रहा है। कर्मों की बात सूक्ष्म है ना, उसमें वो हमें ख्याल में आने योग्य परिणाम, हमने परिणाम कहाँ किया ऐसा लगता है, हर समय का जो परिणाम है उसमें ये सभी बातें गर्भित है। तो इसलिए देखो, पुरुष नपुसक वेदी है, एकेंद्रीय जीव नपुसक वेदी है, उनको पुरुष वेद का बंध हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, स्त्री वेद का भी बंध हो सकता है, वे भी अंतर्मूत अंतर्मूत पलट कर बांध रहे सबको, ख्याल में आई ना बात? ये स्वोदय से भी और परोदय से भी बनती ये बातें यहाँ चल रही। इसलिए नौ नौ के नौ कषाय नौ कषाय लिए। अब तिर्यक आयु और मनुष्य आयु, तिर्यक आयु का बंध किसको होगा? चारों गति वालों को होगा, यानी मनुष्यायु का उदय हो, तिर्यंचायु का उदय हो, देवायु का उदय हो या नरकायु का उदय हो, तिर्यंकायु बन सकती है, ये उसका अर्थ है। मनुष्यायु भी चारों गति वालों यानी चारों आयु के उदय में मनुष्यायु बन सकती है, ऐसे देवायु नरकायु चारों गति वालों के नहीं बनती है, इसलिए उसको स्वोदय से नहीं बनती, परोदय से ही बनती, ऐसा कहा था। ख्याल में है ना ये कहने का प्रयोजन क्या है? तिर्य गति मनुष्य गति, इसकी भी ऐसी बात लेना। हाँ, यानी तिर्यंचों को भी तिर्यंच गति बन सकती है, मदेव मनुष्य नारकियों को भी बन सकती है, यानी जिसका उदय होगा उसका आयु के समान वो गति का उदय है और वहां ये बन सकती है। एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीनद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय जाति, ये पांचों जातियों के लिए, यानी ये कोई भी जीव कोई भी जाति बांध सकते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव है तो पांचों ही जातियों का रुक रुक कर अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त के बाद लौट कर उसका बंध होता रहता है। एकेंद्रीय जीव भी इन सब जातियों को बांधता रहता है और मिथ्या दृष्टि पंचेंद्रिय जीव है तो वो भी ये पांचों जातियों का बंध चलता है उसका। यानी देव और नारकी तो एकेंद्रीय या पंचेंद्रिय बांधेंगे, नारकी पंचेंद्रिय बांधेंगे, वो मार्गणा की बात नहीं चले, पर इनके उदय में वो बन सकती है, ये बात चल रही। औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांग के साथ लेते हैं तो औदारिक शरीर अंगोपांग यानी वो मनुष्य गति या तिर्यंच गति के साथ बनती है तो चारों गति वालों को होगा। तो वैकृत के उदय में भी औदारिक शरीर अंगोपांग बंधेगा और औदारिक शरीर अंगोपांग के उदय में भी ये बंधेगा। समझ में ना कैसा अर्थ लगाना। छह संस्थान यानी किसी संस्थान का उदय हो, वो भी अन्य कोई भी संस्थान बांध सकता है। छह सहनन, किसी एक का उदय चल रहा है तो वो अन्य सहननों का बंध भी कर सकता है। यानी सहनन के बंध की बात, ये किसमें बनती है? छह सहनन बांधते हैं, कौन बांधते हैं? तो चारों गति वाले बांध सकते हैं और देवों के तो इनका सहनन होता ही नहीं है, नारकियों को भी होता नहीं है, एक इंद्रियों को भी होता नहीं है, तो बिना सहनन के भी कोई सहनन का उदय नहीं, फिर भी सहनन बांधते हैं, ये कहना चाहती हूँ। ख्याल में आई ना, इसलिए स्वोदय परोदय कह दिया। तिर्य गति पाय गणपुरी, मनुष्य गति पाय, ये गति के साथ ही ले लेना उसको। उपघात और परघात, जैसे अभी हमने देखा था उपघात परघात उच्छ्वास, इनका उदय तो विग्रह गति में नहीं है, फिर भी इनका बंध तो चल रहा है वहां पर भी, क्योंकि उपघात तो ध्रुवबंधी है और परघात उच्छ्वास ऐसे भी जब पर्याप्त नाम कर्म बांध रहे तो उसके साथ इसका भी बंध हो रहा है, बंध है। हाँ, यानी वो ये कैसी है तो परघात उच्छ्वास कैसी प्रकृति है तो उसमें बंधेगी तो बंधेगी, नहीं तो नहीं बंधेगी, पर्याप्त नाम कर्म के साथ बंधेगी, नहीं तो नहीं बंधेगी, इस तरह। आतप और उद्योत, ये आतप भी एक इंद्रिय जाति का बंध कर रहा है पृथ्वी का एक संबंधी, तब आतप बंध बन सकती है, उद्योत बन सकती है। उद्योत तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तिर्यंच गति के साथ पंचेंद्रिय जाति तक के उद्योत का बंध ऑप्शनल है, यानी तिर्यंच गति बांधी तो उद्योत बंधेगी ऐसे भी नहीं है, हाँ बंधेगी थी बन। तो उद्योत वालों को भी उद्योत का बंध होगा कि नहीं होगा? है वैसे आतप वाले जो पृथ्वी का एक है उनको भी आतप नाम, क्योंकि फिर दोबारा वहीं उत्पन्न हो गए तो उनके, और जिनको उदय नहीं उनके भी इसका बंध हो सकता है। पंचेंद्रीय जीव भी आतप नाम कर्म का बंध करके देव भी जाते हैं ना उसमें केंद्रियों में, तो अपना उदय न भी हो और हो तो भी बंध है, ये यहाँ नक्की कर रहे। दो विहाय गति, जैसे हमने साता साता वगैरह में देखा किसी विहाय गति का उदय है तो अन्य विहाय गति भी बन सकती है। एक केंद्रियों के तो दोनों ही विहाय गति नहीं है फिर भी विहाय गति का बंध तो कर सकते है, जब मनुष्य गति बांध रहे है तो कोई एक विहाय गति बांध करा सकते हैं। यहाँ पर त्रसस्थावर, ये जो युगल है ना, किसी एक का उदय चल रहा है और अन्य बंधे ये हो सकता है। बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, प्रत्येक और साधारण शरीर, यानी हम आप सब प्रत्येक शरीर वाले हैं तो इनको निगोद संबंधी साधारण शरीर का बंध होगा कि नहीं होगा? हाँ, मिथ्या दृष्टि तो हो सकता है ना, इस तरह से लेना। और जो निगोद है उनके भी जो साधारण शरीर का उदय है और प्रत्येक शरीर का बंद भी कर सकते हो। सुभग दुर्भग ये सब जोड़ी जोड़ी में ऐसे लेना। सुस्वर दुस्वर आदेय अनादेय यशस कीर्ति अयशस कीर्ति निज गोत्र और उच्च गोत्र। ये जो ऑप्शनल जो जहाँ जो युगल वाली प्रकृतियां हैं एक के उदय में दूसरी दूसरे के उदय में ये बांध सकती है। तो ये 82 प्रकृतियां कैसी है, स्वोदय परोदय दोनों प्रकार से बनती है, इसलिए इसका अर्थ हमने डिटेल में देखा हर एक प्रकृति पर लगा के। यहाँ उपसंहार गाथाएं 12 और 13 एक साथ पढ़ेंगे फिर उसका अर्थ देखते हैं। नानंतराय दंसन थिरादि चौतेज कम देहायम निमिनम अगुरुलहुव वन्न चौकम चमिच्छत्तम सत्तावीसेदाओ बज्जन्ति सोदयेन पयडियो सोदय परोदयेन वि बज्जन्तवशेषियाओदू। पहले उन्होंने स्वोदय में बनने वाली बता दी और बाद में रिमेनिंग सारी जो परोदय से, क्योंकि परोदय से ही बनने वाली 11 तो पहले बता चुके थे और अब जो 27 प्रकृतियां यहाँ वर्णन की 12वें श्लोक में उसका नीचे अर्थ देखते देखो। पांच ज्ञानावरण, पांच अंतराय, दर्शनावरण चार, स्थिरादि चार यानी स्थिर स्थिर शुभ अशुभ, तेजस और कारमान शरीर निर्माण, अगुरु लघुक वर्णादि चार और मिथ्यात्व, ये 27 प्रकृतियां तो स्वोदय से बनती है। पहले 11 परोदय से ही बनती बताई थी, अब ये जो 27 11 स्वोदय से थी ग्यारह परोदय से थी, ये 27 जो है वो ना 11 परोदय से थी और ये 27 स्वोदय से थी और बाकी रिमेनिंग है वो स्वोदय परोदय और रिमेनिंग कितनी है तो 82 अभी तो हमने पढ़ा ना 82 स्वोदय परोदय, इसलिए श्लोक में क्या हम 12-13 का अर्थ देखते हैं। नीचे देखो पांच ज्ञानावरण, पांच अंतराय, दर्शनावरण चार पढ़ा था हमने। हाँ शेष प्रकृतियां स्वोदय परोदय से, शेष में 82 नहीं समझे, 11 हुई परोदय से, 27 हुई स्वोदय परोदय से, कितनी हुई टोटल 38 हुई, 38 हुई ना। अभी 120 में से कितने बचे, 120 में से लेना आपने किसने से ला। नहीं 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 ऐसा नहीं करना, देखो कुछ तो मात्र परोदय है, कुछ वो मात्र स्वोदय है और कुछ है तो स्वोदय परोदय दोनों में है, उसमें से 82 में से माइनस नहीं करना है इसको, 27 और 11 तो टोटल हो जाएगी 120। हमें 120 प्रकृतियां बनती है उसका हिसाब लगाना है। आगे पढ़े, यहाँ ज्ञानावरण व अंतराय की 10 प्रकृतियां तथा दर्शनावरण की 4 प्रकृतियां, इनको बांधने वाले सब गुणस्थान स्वोदय से ही बांधते हैं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय गुणस्थान तक इनका निरंतर उदय रहता है। अथवा स्वोदय से बंधने वाले प्रकृतियों के भीतर इनका क्या है, माप है, जब पैडे में अभ्यंतरे पादा दो वहां ने ऊपर क्या, बज्जमान पैडिनम अभ्यंतरे पादा दो वहां इनका क्या किया है, व्याप्त उसमें क्या लिखा है? उस देखो देखो नीचे से लास्ट लाइन, नहीं आपकी लाइन अलग होगी। स्वदेह से बनने वाले प्रकृतियों के भीतर इनका
पतन,
हाँ पादा दो वहां पतन। वो उसमें अंतर्भूत होते इस तरह से। पतन उन्होंने किया है वहां पर, पादा दो वहां, हाँ गर्भित इनका समावेश है। हम समावेश शब्द है, समावेश ज्यादा अच्छा है। समावेश लिखना ज्यादा जिसको कहें संयुक्तिक और ठीक लगता है। स्वदेह से बंधने वाले प्रकृतियों के भीतर इनका समावेश है, क्योंकि वो तो निरंतर उदय है ही ना, तो इसलिए उसको स्वदेह से बनती है ऐसा कहा, क्योंकि इनका उदय नहीं ऐसा कभी हो ही नहीं रहा, इनका बंद हो रहा है। यश कीर्ति प्रकृति को मिथ्या दृष्टि से लेकर जैसे कीर्ति है, कहा क्यों आपने यही किया कर दिया? यशस कीर्ति प्रकृति को मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत समय दृष्टि गुणस्थान तक स्वोदय से भी बांधते हैं और परोदय से बांधते हैं, यानी जिसका यशस के उदय में भी यशस कीर्ति बन सकती है, ये उसका अर्थ होता है। क्योंकि इन गुणस्थानों में यश कीर्ति और अयश कीर्ति में से किसी एक का उदय रहता है। अयश कीर्ति की उदय विच्छित्ति कहाँ देखी हमने? चौथे में। तो चौथे के बाद यश कीर्ति का उदय है, और बनती कहाँ तक है यश कीर्ति? यहाँ यश की बात चल रही है। देखो इन्हें वाक्य क्या है, यश कीर्ति चौथे तक बंधेगी, तो चौथे तक यश का भी उदय है और यश का भी है। अभी यश कीर्ति के बंध की बात चल रही है, तो बाद में यश कीर्ति बनती है तो उदय किसका चल रहा है? यश कीर्ति का। कहाँ तक? चौदहवें तक। उदय चौदहवें तक है और बंद उसका दसवें तक है, यानी बाद में वो स्वोदय में बंद रही है। यश कीर्ति चौथे तक स्वोदय परोदय से बंद रही है, बाद में स्वोदय में बन, क्योंकि बाद में उसका अय का उदय नहीं है ना। देखो क्या कहते, देखो ये फिर पढ़ती हूँ मैं 15 नंबर लास्ट लाइन। यश कीर्ति प्रकृति को मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत समय दृष्टि गुणस्थान तक स्वोदय से भी बांधते और परोदय से भी बांधते हैं, क्योंकि इन गुणस्थानों में यश कीर्ति और अयश कीर्ति में से किसी एक का उदय रहता है। यहाँ तो बात ख्याल में आई? असंयत समय दृष्टि से ऊपर के गुणस्थानवर्ती जीव स्वोदय से ही बांधते हैं, क्योंकि संयता संयत से लेकर उपरिम गुणस्थानों में अयश कीर्ति का उदय नहीं रहता। उच्च गोत्र को मिथ्या दृष्टि से लेकर संयता संयत तक के जीव स्वोदय से और परोदय से भी बांधते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों गोत्रों का उदय संभव है। अभी हम परोदय ने नीच गोत्र के उदय कहाँ तक है उसकी चर्चा करनी, बंद की बात नहीं ले रहे। उदय उदय हम हमारे यहाँ बंद उच्च गोत्र का हम कंसिडर करें, उच्च गोत्र का बंद और पांचवे तक नीच गोत्र का उदय। तो नीच गोत्र हाँ दोनों के उदय में स्वोदय और परोदय, उच्च गोत्र का बंध पांचवे तक स्वोदय परोदय दोनों में, और बाद में तो उच्च गोत्र का ही उदय और उच्च गोत्र का ही बंध है। देखो हाँ फिर से पढ़ती हूँ मैं, उच्च गोत्र को मिथ्या दृष्टि से लेकर संहिता संयुक्त तक के जीव स्वोदय से और परोदय से भी बांधते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों गोत्रों का उदय संभव है, परंतु इससे ऊपर के जीव स्वोदय से ही बांधते हैं, क्योंकि वहां नीच गोत्र का उदय नहीं रहता। इस कारण यश कीर्ति और उच्च गोत्र प्रकृतियां स्वोदय परोदय से बंधने वाली है, यह सिद्ध होता है। परंतु जहां तक बनती वो वहां परोदय कहाँ है, ये आप ऐसा प्रश्न नहीं पूछे, इसलिए उन्होंने गुणस्थानों की अपेक्षा बात कह दी। नीचे के गुणस्थानों में स्वोदय परोदय से भी बनती है, इसलिए उसको स्वोदय परोदय में डाल दिया। अब कहते हैं उक्त 16 प्रकृतियां, हाँ, क्योंकि वहां उच्च गोत्र का ही उदय है, क्योंकि पांचवे तक तीरियन चयनार के वो तो नीच गोत्र वालों को भी वो बनती है ना, यश कीर्ति ये उच्च गोत्र तो उनको भी बंधेगा, जो सम्य दृष्टि हो गए तो उच्च गोत्र ही कोई बांध रहे, मिथ्या दृष्टि जी उच्च गोत्र नीच गोत्र दोनों को बांध रहे अल्टरनेटली। ख्याल में आई बात? अब यहाँ कहते हैं अब उक्त 16 प्रकृतियां, ये कौन सी 16 प्रकृतियां, ये जो पांचवे सूत्र में पूछे गए थे। हाँ, इन्हें दसवें गुणस्थान में जो अभी हमने देखी ना बंध विच्छित्ति वाली, निकालो पेज नंबर 9 नंबर पर था, नहीं 7 नंबर पर था, 7 पेज 7, यह पांच ज्ञानावरण चार दर्शनावरण यश कीर्ति उच्च गोत्र और पांच अंतर है, इन प्रकृतियों की बात चल रही है। सोलह प्रकृतियों की बात हो रही थी ना, इसलिए कहा उक्त 16 प्रकृतियों का बंध क्या सांतर है, क्या निरंतर है, और क्या सांतर निरंतर है, इन पृच्छाओं का उत्तर कहते हैं। ये पृच्छाएं, हाँ नंबर नंबर देख लो, प्रश्नों के नंबर पेज नंबर 8 पर है, क्या देखो देखो, हाँ छठा प्रश्न था पेज नंबर 7 पर, क्या सांतर बंध है, नहीं सातवा है वो, हाँ क्योंकि नंबर बाद में डाले, क्या सांतर बंध है, क्या निरंतर है, क्या सांतर निरंतर है, 7 8 9 प्रश्न नंबर 7 8 9, फिर पढ़ती हूँ। उक्त 16 प्रकृतियों का बंध क्या सांतर है, क्या निरंतर है, क्या सांतर निरंतर है, ये प्रश्न 7 8 और 9 हो गए। इन पृच्छाओं का उत्तर कहते हैं। यहाँ इस अर्थ संबंध से पहले सांतर निरंतर और सांतर निरंतर रूप से बंधने वाली प्रकृतियों का बोध कराते, प्रश्नों के आधार से उन्होंने एक एक विषय हमें स्पष्ट कराया। पहले बंध पहले रुकता है क्या, उदय पहले, उसके लिए उदय विच्छित्ति सिखा दी, फिर स्वोदय परोदय क्या होता है वो बात हमको सिखा दी जो नहीं मालूम था। अब कह रहे ये सांतर निरंतर क्या होता है वो बताएंगे। वह इस प्रकार है, पांच ज्ञानावरणीय 9 दर्शनावरणीय मिथ्यात्व 16 कषाय भय जुगुप्सा आयु 4 आहारक शरीर तेजस शरीर कार्मण शरीर आहारक शरीर अंगोपांग वर्ण गंध रस स्पर्श अग्रु लघु उपघात निर्माण तीर्थंकर और पांच अंतराय, ये 54 प्रकृतियां निरंतर बनती है। देखो हमने तो ध्रुव बंदी पहले सीखी थी, कितनी थी 47 ध्रुव बंदी हुए 47, और उसमें निरंतर बंदी और ऐड की उन्होंने, क्योंकि ध्रुव बंदी और निरंतर बंदी को मिलकर यहाँ निरंतर बंदी बता रहे। निरंतर बंदी कितनी होती है, 54 करो ना, मैंने वो बात निकाली ध्रुवबंदी और निरंतर बंदी, ऐसा भेद करके बताओ। सात होती है। कौन सी सात? देखो ध्रुवबंदी 47 है, अनादि से बनती आती है और अपनी विचित्र तक बनती है। और ऐसी कुछ प्रकृतियां जिसको निरंतर बंदी कह रहे, बंद शुरू होने पर अंतर्मूर्त मिनिमम बंदेगी बंदेगी, उसको निरंतर कहते हैं। तो वो ऐसी कौन सी है? चार आयु है, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग है और तीर्थंकर प्रकृति है। यह ऐसी, ऐसा नहीं है कि एक समय के लिए बंद कर रुक जाए। अन्य जो आप कहेंगे साता असाता भी अंतर्मूर्त तक बंदेगी ना, वो एक समय तक भी बन सकती है। एक समय में बंद करके वो रुक गया और दूसरा शुरू हो गया, हो सकता है उनमें। ये जो अन्य जो प्रकृतियां हैं, हाँ, वो तो उसको निरंतर बंदी नहीं कहते, वो प्रतिपक्ष वाली प्रकृतियां होती है, वो अलग से आती है। ये प्रकृतियां ऐसी है वो प्रतिपक्ष के कारण वो नहीं रुकती है। चार आयु तो बंद के रुक जाती है, ऐसा नहीं कि प्रतिपक्ष का बंद हो रहा है इसलिए ये रुकी है। हाँ, अभी इसको यहाँ क्या उसकी परिभाषा बताते वो हम देखेंगे। यानी यहाँ तो ऑर्डर जो इसे दोनों मिक्स करके यहाँ लिखी है, हमें याद है 47 प्रकृतियां, याद है कि नहीं याद? देखो पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण और पांच अंतराय, 19 गिनो, और मोने की भी 19 गिन लो। कैसे? मिथ्यात्व, 16 कषार, भय जुगुप्सा, हो गए ना 19 और 19, 38 हो गई। अब बाकी जो है नाम कर्म की है, कितनी है? हाँ, तेजस है, कारमाण है, वर्णादि चार है, अग्रु लघु उपघात है और निर्माण है, वो 38 और 9 47 हो जाती है। ये कैसी है? ध्रुवबंदी है। ध्रुवबंदी का अर्थ है अपनी बंध विच्छित्ति तक बनती ही रहती है। मोहनी की कौन सी ली हमने? 16 कषाय, भय जुगुप्सा, और बाकी पांच ज्ञानावरण ली, नौ दर्शनावरण के लिए और पांच अंतरा की, ये 19 और 19 38 और नाम कर्म की 9। और यहाँ जो बता रहे सब मिलकर 54, उसके लिए सात और बतानी हमको, चार आयु, आहारक द्विक और तीर्थंकर, हो गई ना 54 की 54 ये लिस्ट। उन्होंने दोनों को मिक्स करके लिखा है ना। क्या क्या? आप उदय की और बंद की बात घोटाला कर रहे। उपघात निरंतर यानी ध्रुवबंदी है, ध्रुवोदय नहीं है, विग्रह गति में उसका उदय नहीं था। देखो 7, 54 हो गए ना, ये 54 को यहाँ निरंतर कहे। तो ये प्रकृतियां निरंतर बनती है, उसका उपसंहार गाथा बता रहे। सत्ते ताल दुआओ तिथय आहार आउ चत्तारी चौवन्नम पयडियो बज्जन्ति निरंतरम सौवा। मैंने आगे का पढ़ा भी नहीं था, ये ऐसा ही उन्होंने किया। देखो सत्ते ताल 47 ध्रुव प्रकृतियां और बाकी सात बताए, तीर्थंकर, आहारक शरीर, आहारक शरीर अंगोपांग और चार आयु, ये सब 54 प्रकृतियां निरंतर बनती है। शंकाकार पूछ रहे हैं, हमने पहले सब याद किया है, ध्रुवबंदी प्रकृतियां कौन सी है? समाधान, चार आयु, तीर्थंकर और आहारक द्विक से रहित ये पूर्वोक्त प्रकृतियां ही, यानी 54 में से माइनस ये सात कर दो तो 47 रह गए ध्रुव प्रकृतियां हैं। इन प्रकृतियों की निरूपक गाथाएं ये 15 और 16 एक साथ। नानंतराय दशयम, देखो ज्ञानावरण और अंतराय की मिलकर 10। नानंतराय दशयम दंशन नवमिच्छ सोल सकसाया भयकम मधुगुण छाविय तेजा कम्मम चवन्न चदु अगुरु लहु अघादम निमिनम नामम च होति सगदालम बंधो चौवियप्पो द्वबंधीनम पयडि बंधो। ज्ञानावरण और अंतराय की 10, 5 और 5 मिलकर उन्होंने 10 बताए। 9 दर्शनावरण, हमने 19 गिनाई थी ना, ये मिथ्यात्व, 16 कषाय, भय कर्म, जुगुप्सा, तेजस और कारमान शरीर, वर्णादि 4, अग्र लघु, उपघात और निर्माण, नाम कर्म, ये न उपघात, उपघात आता है ना, परघात नहीं आता। देखो परघात और उच्छ्वास ये पर्याप्त के साथ बंधेगी, अपर्याप्तों के नहीं बनती है। ये 47 ध्रुवबंधी प्रकृतियां है, इनका प्रकृति बंध सादी अनादि ध्रुव एवं अध्रुव रूप से 4 प्रकार का होता है। ये सादी अनादि क्या होता है, देखो देखो, सादी बंध किसको कहना, जिसको पहले बंध कभी नहीं था और फिर शुरू हुआ उसको सादी बंध कहेंगे। तो ज्ञानावरण की सादी बंध कैसे होगी, कब, उपशम श्रेणी में 11वें में बंध नहीं था, 10वें में फिर शुरू हुआ, पहले अनादि से बनता था उसकी बात नहीं है, अनादि से बनता था उसको अनादि बंध कहेंगे। उपशम श्रेणी उतरते समय बंध नहीं था और शुरू हुआ उसको सादी बंध कहेंगे। तो इनका सादी बंध भी और अनादि बंध भी है, इसलिए कहते हैं सादी अनादि दोनों हो गए ना। और ध्रुव बंध किसमें, अभव्यों में ध्रुव बंध कहेंगे, कभी रुकने वाला नहीं है, और अध्रुव भव्यों में अध्रुव कहेंगे। ये 4 प्रकार है। हाँ, ये आपका प्रश्न अच्छा है, ऐसा नहीं है, क्यों किया मैं बताती हूँ। अभी 47 ख्याल में आई, कौन सी ध्रुवबंधी, कौन सी है, ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, मिथ्यात्व है, कब से बन रही है, अनादि से। अब जो 7 प्रकृतियां बताई उसमें से कोई कोई भी एक नाम बताओ, नाम बताओ मुझे, तीर्थंकर, अनादि से बन रही है, कब बंधेगी, अरे सम्यक तो होने पर, वो भी किसी किसी के बंधेगी, क्या वो अनादि से बन रही है, नहीं, ख्याल में, हाँ, इसलिए वो 7 अलग ही है। निरंतर का अर्थ क्या है, हर समय बन रही है, एक बार बंधना शुरू हुआ तब जाके निरंतर बंधेगी, तो उसको अनादि कहेंगे कि हम अनादि कहेंगे क्या, नहीं, 47 प्रकृतियां अनादि से है, उसमें अनादि बंध भी है और सादी बंध भी है, ध्रुव भी है और अध्रुव भी है। अभी तीर्थंकर प्रकृति पर लगाओ ये सब, वो सादी है क्या अनादि है, सादी ही है, ध्रुव है क्या अध्रुव है, अध्रुव ही है, बस ख्याल में आई ना डिफरेंस, ख्याल में आया कि नहीं, प्रश्न पूछा आपने, अच्छा किया, क्योंकि आप विचार कर रही है कि ऐसा क्यों। अब कोई भी आयु का नाम लो, लो आयु कब बनती है, अभी वो जब कभी त्रिभाग में या देव नारके में 6 महीने बाकी है तब बंधेगी, क्या अनादि से बन रही है, नहीं, और बनती कितने काल तक बंधेगी, कि अंतर्मूर तक बंधेगी, यानी वो कैसी है ऐसा ही है, कोई बात नहीं, हम कभी तो बांध के आए ना, हाँ कोई बात नहीं, पहले बांधी थी ना वो याद करके बता रहे, हाँ अब नहीं बांध रहे है ना। आपका ये प्रश्न है कि अंतर्मूर्त में बनती और 33 सागर के परमाणु, हाँ उतने में इतने सारे परमाणु इकट्ठे हो जाते हैं, कितना बोझा लगता होगा ना उसको, देखो भले देवायु बांधी हो या नरकायु, जो कोई बांधते हैं, अभी जितने भी करोड़ पूर्व की बांधे या कुछ छोटी बांधे, उतने परमाणु उतने काल में इकट्ठे, ऐसा सहज है। परिणाम कैसे होते हैं, सोच समझ कर होते हैं क्या, वो कर्मों में उसकी अपनी योग्यता से हो रहा है, हमें कर्मों में कुछ नहीं सोचना है, और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रहे, वो तो धूल है, जड़ है, उसमें कोई ज्ञान नहीं है, कोई अक्कल नहीं है, अक्कल वाले तो हम हैं, कैसे अक्कल वाले हैं, ये धूल को मैं हूं मान रहे हैं, शरीर मैं नहीं हूं, और फिर वे हम ये जड़ को कौन मान रहा है, चेतन, क्या मान रहा है, ये जड़ मैं हूं, शरीर रूप मैं हो गया हूं, उसको क्या मानने की जरूरत थी, वो स्वयं चेतन है, चेतन मान लो अपने को, तो तो चेतन रूप से रह जाएगा अनादिकाल से अनंत काल, यानी अनादि सादी से अनंत काल तक। ये उसकी भूल है ना, ज्यादा अक्कल है ना, इसलिए उसे ज्यादा अक्कल इधर आ गई उसकी। कैसे? ये वो तो चैतन्यमय है, ज्ञानमय है, सब जानने देखने की पावर तो उसकी अपनी है, मानने की भी शक्ति उसकी है। तो कैसा मान रहा है? ये शरीर जो स्थूल है औदारिक, इस रूप में हूँ। आप कहेंगे नहीं नहीं, ये वर्ण रस है उससे तो मैं जुदा हूँ, पर अंदर जो सूक्ष्म शरीर पड़ा है ना, उस रूप में हूँ मानता है। कैसे? ये कर्म के उदय में जो राग द्वेष आदि सब जो हो रहे, कर्म के उदय में जो जो बातें बन रही, वो मेरा स्वरूप है मान रहा है। इसका अपना स्वरूप तो जुदा है, ये तो चैतन्य है और कुछ नहीं है। ये वर्णादि भी मेरे और रागादि भी मेरे, ये उसने मान के रखा है। मानना छोड़ दो तो प्योर फॉर्म में आ जाएगा। कल बात आई ना आत्मा अनुशासन में थी कि नहीं? कल बहुत अच्छी बात चल रही है। ये तो शरीर के कारण ही सारी बातें हो रही ना, दुखी क्यों हो रहा है शरीर को देख देख कर? एक तो शरीर मैं हूं मान रहा, फिर ये काला है जाड़ा है ऐसा है वैसा है करके मैं ऐसा हो गया मानता है, और फिर ज्यादा और दुखी हो जाता है ना। मैं जाड़ा हुआ, अभी मैं पतला कैसा हो जाऊंगा, इसके लिए चर्चा चिंता करता है। शरीर में रोग है तो मैं रोगी हो गया। अरे उस समय भी मैं चैतन्य हूँ, इतना ही तो मानना है उसको, और क्या करना है? वो नहीं आता, वो वही उसी के विकल्प आते हैं। किसके? इस जीव ने अनादि से विकल्प के बिना कुछ किया ही नहीं सके थे। ये सुखियां तो उत्कृष्ट पुस्तक है ही है, ये आत्मानुशासन भी गजब की पुस्तक है। और उस पर हम वो क्षुल्लक मनोहर जी के वर्णी जी के प्रवचन पढ़ रहे, खरोखर गजब है। यानी जो प्रत्येक द्रव्य की और इसकी स्वतंत्रता बताई, जो हम द्रव्य स्वामी जी ने जो समझाया है उसी को उन्होंने सादी भाषा में बताया। मूल तो ग्रंथ तो गुणभद्र आचार्य। हाँ हाँ, ये कल बात इनकी आई थी। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने प्रदेशों में रहता हुआ केवल विकल्प करता रहता है, कल्पनाएं करता रहता है। ऐसे भी बात आई कि जिनके जिनके कषाय मैच होती है ना, उनके आपस में बनती है। हाँ, वो तो मित्र हो जाते हैं। जहाँ कषाय मैच नहीं होती है और हमने मान लिया ना कि इतने सारे विश्व में अनंत जीव है, उसमें ये दो चार जीव मेरे हैं, वो किसको देखकर? वो पुद्गल को देखकर ही कह रहा है। इन्हें अपने को भी पुद्गल शरीर रूप मानता है, दूसरों को भी शरीर रूप पुद्गल को ही उनको मानकर उसमें आपस में वे तो राग द्वेष के परिणाम चलते रहते। अच्छी बात है, बहुत सारी बहुत अच्छे उदाहरण भी है उसके अंदर। अब ये बात क्या हो रही थी अपनी? सादी अनादि की बात चल रही थी। और आपका प्रश्न समझ में? 47 को ध्रुवबंदी कहते हैं क्योंकि वो अनादि से बन रही है। ध्रुवबंदी प्रकृतियां कहा, अपनी अपनी बंध विच्छित्ति तक बनती है। उसमें से तो मिथ्यात्व तो केवल पहले गुण स्थान में बनता है। आप कहेंगे चौथे वाले को नहीं बनता तो उसको ध्रुवबंदी क्यों कह रहे? नहीं, बंध विच्छित्ति तो अनादि से बन, हर समय बन रहा। जैसे भय जुगुप्सा ध्रुवबंदी है, परंतु आठवें गुण स्थान के अंत तक हर समय बनती रहेगी। इस तरह से। हाँ हाँ, आपका प्रश्न आ गया, शंका। निरंतर बंध और ध्रुव बंध में क्या भेद है? ये ध्रुवा हुआ है, ध्रुव बंध करो, समाधान। जिस प्रकृति का पद अर्थात स्थान जिस किसी भी जीव में अनादि एवं ध्रुव भाव से पाया जाता है, वह ध्रुवबंदी प्रकृति है। यह अनादि से ध्रुव रूप से बनती आ रही है। और जिस प्रकृति का पद, पद ने उसका स्थान, नियम से सादी, नियम से बताया सादी एवं अध्रुव। एक कंडीशन क्या? सादी एवं अध्रुव तथा अंतर्मूर्त आदि, आदि यानी अंतर्मूर्त से लेकर ऊपर के उसके विकल्प हो गए, अंतर्मूर्त से कम वाली नहीं लेना यहाँ, वह निरंतर बंध प्रकृति है। देखो ऐसी कुछ प्रकृतियां है वो तो हम अनादि से नहीं बन रही है, कभी बंधेगी, यह तो अंतर्मूर्त की कंडीशन डाली। पर ऐसी कुछ प्रकृतियां हैं कि एक समय में बन सकती है, अंतर्मूर्त तक भी बन सकती। बोलो कौन सी ऐसी प्रकृतियां? एक समय बंदेगी तो बंदेगी, वो तो प्रतिपक्ष वाली नहीं है, है तो अप्रतिपक्षी, पर एक समय से अंतर्मुहूर्त तक बन सकती है। हाँ, आतप उद्योत होता और चार है, परघात उच्छ्वास। ये ग्यारह जो है ना, वो कैसी अप्रतिपक्ष वाली है। अभी जो सात हम निरंतर बंदी में ले रहे हैं, वो सात वो उनके प्रतिपक्ष नहीं है। ऐसा ये रस्या स्थावर बनेगी ऐसा नहीं है, साता या असाता जैसे प्रतिपक्ष वाली नहीं है, बनती है। परंतु ये सात कैसी है, तो मिनिमम अंतर्मुहूर्त तो बंधे, अंतर्मुहूर्त से लेकर आगे के काल तक बंधेगी, ये उसका अर्थ है। और ये जो हमने चार देखी, कौन सी, आतप उद्योत परघात उच्छ्वास, उपघात तो निरंतर बनती है, ध्रुव बंधी है वो, परघात और उच्छ्वास, क्योंकि पर्याप्त नाम कर्म वालों के साथ वो बंधेगी। जो पर्याप्त का बंध कर रहा है उसके साथ ये परघात उच्छ्वास बंधेगी। हाँ, जैसे तीन इंच गति के साथ उद्योत बनती है तो बनती है, अंतर्मूल तक भी बनते ही, एक समय तक भी बन सकती है, उसके जरूरत नहीं कि अंतर्मूल तक बंधनी ही चाहिए, और अंतर्मूल से ज्यादा भी नहीं बंधेगी वो समय दृष्टि को बंधेगी, परंतु मिथ्या दृष्टि की तो लट लट कर वो तो बंधन रुक भी जाएगा। अभी आगे बढ़े, देखो नीचे के तीन लाइन, जिस जिस प्रकृति का बंध काल के समाप्त होने से बंध विच्छेद संभव है, वह सांतर बंध प्रकृति है। पर्याप्त नाम कर्म के साथ बनती है, नहीं तो नहीं बनती है। उदय की बात मत छोड़ो, सोचो बंध की बात सोचो, बंध जिसको होता है, यानी उच्छ्वास ये प्रतिपक्ष वाली प्रकृति नहीं है, ऐसा समझना। बंधेगी तो बंधेगी, नहीं तो नहीं बंधेगी, इस तरह से। प्रतिपक्ष प्रकृति अलग गिनाई है, उसमें ये त्रस या स्थावर, सिर या सिर, वो सारी वो प्रतिपक्ष वाली, एक कोई बंधेगी या दूसरी बंधेगी, तो उसमें लौट लौट कर बनती रहती है, वो अलग प्रकृतियां हैं। अब यहां कहते जिस जिस प्रकृति का बंध काल के समाप्त होने से बंध विच्छेद संभव है, वह सांतर बंध प्रकृति है। सांतर यानी बीच में अंतर हुआ, फिर बनती है, फिर बंध। असाता वेदनीय, स्त्री वेद, नपुसक वेद, अरति शोक, नरक गति, जाति चार, अधस्तन पांच संस्थान, पांच सहनन, नरक गत्यानुपूर्वी, आतप त करना, उद्योत, अप्रशस्त विहाय गति, स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण, अस्थिर अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और अयशस्कीर्ति, ये 34 प्रकृतियां सांतर रूप से बनती हैं। देखो सांतर रूप से अर्थ क्या है इसका, ये देखो देखो प्रतिपक्ष होने के कारण इसका अंतर से बनती रहती है, परंतु इसके साथ इनके प्रतिपक्षी को नहीं लिया है, कहीं कहीं असाता को लिया पर साता को नहीं लिया, वो सांतर भी और निरंतर भी है। क्यों? क्योंकि असाता की बंदी विच्छित्ति होने पर वो निरंतर बनती रहती है। इतने कितने, अभी ये जो देखो, अभी जो जो हमने देखी ना, यहाँ असाता को लिया, असाता वेदनी का बंद रुक गया छठे में, तो बाद में ऊपर के गुण स्थानों में तो साता बनती रहती है ना निरंतर। स्त्री वेद नपुसक वेद की बंद विच्छित्ति हो गई, पहले में और दूसरे में, वो नपुसक की और स्त्री वेद की, और वो ऊपर पुरुष वेद बनता रहेगा हमेशा, तो वो सांतर निरंतर में चला जाएगा और ये सांतर में आ जाएगी। इनकी बंधे विच्छेदी देखो, जिस जिस प्रकृति का, पेज नंबर 17 नीचे से तीसरी लाइन, बंध काल के समाप्त होने से बंध विच्छेद संभव है, वह सांतर बंध प्रकृति है। फिर सांतर बंध क्यों कहा, जब तक उसकी बंध विच्छित्ति नहीं हुई है वो प्रतिपक्ष के साथ बंध रही है, कभी इसके कभी उसका बंद हो रहा है। जैसे मिथ्यात्व का भी बंधी विच्छित्ति होती है, पर उसका कोई प्रतिपक्ष नहीं है कि मिथ्यात्व बंधेगी या अन्य कोई प्रकृति, ऐसा तो कोई वहां नहीं होता है। यानी बंध विच्छित्ति तक तो इसका प्रतिपक्ष का भी बंध के साथ ये अंतर पड़ता है। अभी आतप उद्योत प्रतिपक्षी पर नहीं है, फिर भी इसका अपना जो बंध विच्छित्ति जब तक नहीं हुई तब तो एक समय से ये अंतर्मूर्त तक बनती है रहती है बीच बीच में। अब आगे पढ़ेंगे तो और ख्याल में आ जाएगा। 18 पेज पर आना। क्या कहते हैं? नरक गति लिया। हाँ, दूसरे गुण स्थान में होती। हाँ, सातवें नरक में क्या होगा? वो निरंतर बन रही है, अग्नि वायु को भी निरंतर बनती है असंख्यात लोक प्रमाण काल तक, है ना? उसको यहाँ नहीं लिया है, सांतर में नहीं लिया। वो जरूरत नहीं कि अंतर्मूर्त में या छोटे काल में रुक जाए। अब शेष 32 प्रकृतियां सांतर निरंतर रूप से बनती है, उनका नाम निर्देश किया जाता है। पढ़ेंगे उसको। वही इस प्रकार है, साता वेदनिया। देखो इसके असाता का बंध विच्छेद होने पर ये निरंतर से बन रही, पहले तो सांतर से बनती थी पुरुष वेद। अभी दूसरे गुण स्थान तक तो सांतर थी, बाद में निरंतर हो रही है। हास्य रति अरति शोक का उदय मिट है, सॉरी बंध मिट जाने पर, छठे में बंध मिट जाने पर इसी का बंध हो रहा है। तिर्यक गति, देखो तिर्यक गति मनुष्य गति जो है, तिर्यक गति को सांतर निरंतर कैसे कहेंगे? देखो उसका भी दूसरे गुण स्थान तक तो सांतर है ही है, परंतु अग्नि का एक वायु का एक उनके वो लंबे काल तक वही बनती रहती है, या सातवें नरक का नारकी मिथ्या दृष्टि सासाधन वाले तो इसी को बनते रहते हैं, इसलिए उसको कहेंगे वो निरंतर भी है। ख्याल में आई ना बात? मनुष्य गति समय दृष्टि होने पर देवनारकी इसी को बांधते रहते इसलिए निरंतर हो गए। देव गति अभी मनुष्यों में जो है, मनुष्य समय दृष्टि, मनुष्य तीरें समय दृष्टि इसी को बांधते रहेंगे। पंचेंद्री जाति ऐसा ही लेना जो समय दृष्टि है, अन्य जातियों की बंध विच्छित होने पर पंचेंद्री जाति का निरंतर बंध होता रहता है। ये निरंतर बंध का काल बताएंगे जरा अश्विन भाई? पंचेंद्रिय जाति लगातार बनती रहे कितने लंबे काल तक बन सकती है? उदय की बात नहीं कह रही, हाँ पेज नंबर अभी 18 पर है। हाँ बोलो बोलो। शादी दो छासर सागर, और कोई विकल्प है किसी के पास? आप जितना बोलो उतना। अरे 22 सागर बता बढ़ाओ ना नरक के, 22 सागर तक छठे नरक में डालो पहले, तो पंचेंद्रिय जाति का बंद करता रहा, वहां से निकलते निकलते वो सम्यक तो प्राप्त किया उसने, फिर 266 सागर तक उसने पंचेंद्री जाति बांधी, और फिर 31 सागर में भेज दो ना उसको। वो 66 132 हो जाएगी, 132 और 22 कितने हो गए? और 31 183 कुछ है था। नहीं हमने वो महाबंध में देखा ना, किसमें देखा था? देखो देखो 22 पहले लिया, फिर दो बार 66 लिया, फिर 31 लिया, सान एक 7 अन्य 8 15 साल एक सान चार 10 अन्य 8 185 लिया था, 185 सागर। नहीं, ये बराबर 185 सागर दिखाता है। पंचेंद्री जाति की बात है ना ये, कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं। औदारिक शरीर, वैकृत शरीर, ये समझ में आते हैं ना, ये निरंतर बंध है। हाँ, वैसे भी बिना सम्यक के भी जो देव है वो औदारिक शरीर का ही बंध करेंगे, देवनार के तो औदारिक शरीर का ही बंध करेंगे, और मनुष्य तिरेंचो में सम्यक दृष्टि जो है वो ऐकृत शरीर का ही बंध करेंगे। इस तरह से लेना समचतुर संस्थान, उसमें भी ये लगा लो, औदारिक शरीर अंगोपांग, वैकृत शरीर अंगोपांग, वज्रषभ नाराज, वज्र नाराज शरीर सहनन। अब जो देव समय दृष्टि है तो यही इसी का बंद करते रहेंगे। तीर्य गति प्रायज्ञानपुरी, वो तीरेंच गति के समान है, मनुष्य गति प्रायज्ञानपुरी, मनुष्य गति के साथ उसको भी ले लेना, और देवगति जैसा देवगति प्रायज्ञानपुरी होगी। परघा तुच्छवास प्रशस्त विहाय गति, देखो ये जो समय दृष्टि को ये इन्हीं का बंद चलता रहेगा, मिथ्या दृष्टि तो इसका बंद करते भी है, नहीं भी करते, परंतु इसको बाद में वो निरंतर बंद होगा। त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर, इसको भी स्थिर शुभ सुभग, अभी इनके जो प्रतिपक्ष की बंद विच्छित्ति होने पर जो अस्थिर अशुभ जो है वो तो छठे में बंद रुक गया, बाद में तो यही निरंतर बंधेगी। सुस्वर दुस्वर, देखो दुस्वर को भी यहाँ क्यों लिया, स्थिर शुभ सुभग सुस्वर, सुस्वर तो समझे जहाँ दुस्वर की बंदे विच्छित्ति हुई। हाँ, उदय की बात नहीं, बंध निरंतर चल रहा है, ये निरंतर सांतर निरंतर की बात चल रही है। उसमें नहीं लिया है ना, वो नहीं भी बनती ऐसा लिया ना, एक इंद्रिय के साथ बंधेगी ही नहीं वो। आदेय यशस कीर्ति, निज गोत्र और उच्च गोत्र, अभी निज गोत्र का जो है वो तीरेंज गति का लगातार बंध है, तो निज गोत्र भी लगातार बांधता रहेगा। ये शांत निरंतर रूप से बंधने वाली प्रकृतियां है, यह उपसंहार गाथाएं। पढ़ेंगे 17 और 18। इत्थिन उनसे वेदा जाई चौकम असाद निरय दुगम आदा उज्जो वारई सोगा सुह पंच संठाना पंचा सुह संघड़ना विहाय गई अपसत्थिया अन्ने थावर सुमा सुहदस चौथी सिंह सांतरा बंधा। पहले वाली जो बताई थी सांतर वाली, स्त्री वेद नपुसक वेद जाति चार, असाता वेदनीय नरगति नरगत्यानुपूर्वी, यानी नरगति प्रायज्ञानुपूर्वी उसी को कहते हैं। आतप उद्योत अरति शोक अशुभ पांच संस्थान और पांच अशुभ सहनन। अप्रशस्त विहाय गति तथा स्थावर सूक्ष्म एवं अशुभ आदि अन्य दश, इस प्रकार ये 34 प्रकृतियां यहाँ सांतर बंध वाली है। दुस्वर केवल सांतर है, उसको निरंतर में यहाँ क्यों लिखी, ऊपर लिखा है क्या उन्होंने, सुसर दुसर आदेज दोन प्रतिशु सुसर दुसर आदेज। सांतर निरंतर में लिया ना उनको।
हाँ,
यानी दूसर का ही निरंतर बंद हो बाद में बनोए आप हाँ उसमें नहीं लिया सांतर को लिया ना पर यहाँ उसको नहीं क्यों नहीं लिया वही तो मुझे प्रश्न पड़ा था ये सांतर में क्यों नहीं लिया था क्योंकि जो नीचे तो अंतर्मूर्तक बनती है परंतु बंदे विच्छेद नहीं वो तो उनके सिद्धांत कोश में से बता रहे उसमें सांतर निरंतर की बात नहीं है कर्मकांड में सांतर निरंतर बंद की बात नहीं है इसी में है वो तो इसमें से देख रहे हैं आप सिद्धांत कोश नहीं वो सिद्धांत कोश वाले जीरोक्स में से देख किसमें षटखंडागम की प्रस्तावना हाँ उसमें सांतर में लिया है यहाँ लिख के रखते हैं ना कशा मे हाँ देख लो सांतर कहा उसको ना और सांतर ही ठीक लगता है ना सांतर बंद होता है इसे अप्रशस्त विहार गति को भी लिया ना वहां पर अरे वहां लिया है ना ऊपर पहली लाइन में दुस्वर लिया है पहली लाइन में लिया है दुबक हाँ देखो देखो अभी है यही पेज नंबर 18 पर देखो पहली लाइन में स्थावर सूक्ष्म अपया साधन अशिष अशुभ दुर्भग दुस्वर सांतर में है वही तो हम देख रहे थे अब यहाँ जो दुस्वर का दूसरा कुछ अर्थ होना है यहाँ पर वो नहीं इसमें सांतर निरंतर में उसको नहीं लेना चाहिए हाँ वो दूसर वहां नहीं होना चाहिए उसी के लिए हम ऑब्जेक्शन ले रहे हैं शेष 32 गिनो ना सातावेदनी 1 पुरुषवेद 2 गिनो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नंबरिंग डालो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 दूसर को छोड़ो नहीं तो 32 होते नहीं 33 हो जाती है 30 हाँ उसमें नहीं लिया 31 और 32 हमने नंबरिंग डाले तो दूसर को उसमें स्थान ही नहीं है निकाली देना सुसर दूसरा आदेश की पाठा यानी अन्य किसी उसमें वो गलती से पड़ा है इसलिए उसे फुटनोट भी देखा उसने नहीं 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 ऊपर का बराबर है हाँ हाँ प्राकृत में नीचे से तीसरी लाइन लास्ट शब्द है दूसर वो भी निकालना पड़ेगा क्योंकि वो सांतर में है ही क्योंकि बंद विच्छित होती है हाँ चलो यहाँ पर भी विषय परिचय में उसको सांतर में ही लिया था बाद में नहीं लिया है क्योंकि यहाँ 32 गिना है ना हमने नंबरिंग डाले तो 32 में वे एक्स्ट्रा हो जाती है 33 नंबर की 32 ही प्रकृतियां बताइए अभी अपना समय भी हो गया हाँ अभी उपसंहार गाथाएं भी रहेगी है, कल फिर उसको रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।